मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाति भई अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग इस बात का अनुभव रोज करते हैं, इस बात को और लोगों से भी कहते हैं, स्वयं भी जानते हैं कि हमारे जीवन में मलिनता हम स्वयं लाते हैं। मलिनताएं बाहर से नहीं आती, हमारे अपने अंतरंग के परिणामों की कलुषता से हमारे जीवन में मलिनताएं आती हैं। फिर चाहे वह क्रोध की कलुषता हो, अहंकार या छल कपट की कलुषता हो, या कि हमारे भीतर जागृत होने वाले लोभ से आने वाली कलुषता हो, ये सब हमारे जीवन को मलिनताओं की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। रोज हमें इनसे गुजरना पड़ता है। किसी के जीवन में ये कम है, किसी के जीवन में ज्यादा है। हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि ये जीवन से निष्कासित हो जाए, लेकिन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी हमें क्रोध आ ही जाता है, हम अहंकार में पड़ ही जाते हैं, छल कपट करने का धोखा देने का मन भी हो जाता। इन तीनों चीजों का कारण क्या है? क्रोध, अहंकार और धोखा देने की प्रवृत्ति के पीछे क्या चीज है? मेरे भीतर लोभ की प्रवृत्ति मुझे इन सब के लिए प्रेरित करती है। इसलिए मलिनता का सबसे बड़ा कारण अगर है तो वो लोभ है। अब लोभ सहसा किसी को कह दिया जाए कि आप बड़े लोभी लालची हैं तो नहीं समझ में आएगा, स्वीकार नहीं कर सकेंगे एकदम सहसा। लेकिन ये जो हम लाभ हानि का विचार करते हैं भौतिक सुख सुविधा को लेकर के, वो लोभ की ही प्रवृत्ति है। चार पैसे का इसमें लाभ है, वो काम करो, यही ना करते हैं। इस तरह जो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हम निरंतर और जो प्रयत्न करते हैं, वो सब क्या है? उसी लोभ जनित प्रवृत्ति का परिणाम है, और वही हमारे अपने जीवन को मलिन बनाने, कलुषताओं की तरफ ले जाने का मुख्य कारण है। उसी से जुड़े हैं तार। लोभ जागृत होता है किसी चीज को प्राप्त करने का। कैसे प्राप्त करें? सहजता से प्राप्त नहीं होती तो मायाचारी करनी पड़ेगी। मायाचारी अगर प्रकट हो जाएगी तो गुस्सा आ जाएगा, उसमें देर क्या लगनी है। मायाचारी प्रकट हो जाएगी तो अहंकार भी आ सकता है, और अहंकार अगर किसी का संतुष्ट नहीं हुआ तो क्रोध आ जाएगा। लेकिन देखें तो घूम फिर करके बाद उसी लोभ तक आती है। इसलिए विचार ये करना चाहिए कि मेरे जीवन की पवित्रता के लिए जरूरी है कि मैं इस लोभ को कमती करूं। याज्ञवल्क्य के एक ऋषि हुए हैं, प्रसिद्ध घटना है उनके जीवन की कि राजा ने उनका सम्मान किया, उस सम्मान में अपार धन संपदा दी, गायें दी, घर लौटे, उनकी दो जीवन साथी थी, तो वैसे उदासीन था उनका मन, पर अब राजा ने सम्मान में सब चीजें दी हैं, सो ले आए। और फिर दोनों को बुला के कहा कि देखो, मुझे तो इन सब की जरूरत नहीं है, मैं तो जाता हूँ जंगल में अपनी साधना तपस्या करूंगा, तुम दोनों जितनी जिसको चाहिए हो सो ले लो। तो एक जीवन साथी ने तो कहा कि ठीक है, आप आधा आधा हम दोनों को दे दें। दूसरे वाले ने मालूम क्या कहा कि हमें आपसे एक बात पूछनी है, अगर आपको इस संपत्ति में सुख मिल गया है तो आप जंगल में किस चीज को पाने जा रहे हैं, और अगर आपको इस संपत्ति में सुख नहीं मिला तो हमारे मत्थे छोड़कर क्यों जाना चाह रहे? अब बात तो ये, इतनी छोटी सी चीज लेकिन बहुत बड़ी चीज है ये। ये जिस दिन अपन को समझ में आ जावे, हम अपने संसार का प्रपंच भी फैलाते रहते हैं, भगवान की पूजा पाठ भी करते रहते हैं, दो ही साधे रहते हैं अपन, हाँ दोनों चीजें। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस सुख इस संपत्ति में आपको सुख मिल गया है तो फिर बाकी करने की क्या आवश्यकता, और अगर इसमें सुख नहीं है तो इसे दूसरे को सौंप के क्यों जा रहे, या अपने स्वयं इनमें आसक्ति क्यों रख रहे हैं। भाई इतनी ही चीज अपन के समझ में आ जावे कि मुझे इस भौतिक सुख सुविधा की सामग्री में वास्तविक सुख नहीं मिला, मैं व्यर्थ ही इसके लिए निरंतर प्रयत्न करता हूं, मैं कुछ थोड़ा सा इस तरह भी करूं जिससे कि इसके माध्यम से मेरा काम तो चले लेकिन मेरे मन में कलुषता और मलिनता ना आ पावे, मैं इन भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग तो करूं लेकिन इसमें आसक्त ना हो। ऐसा कोई प्रयास कर सकते हैं क्या इस संसार के बीच रह करके? किया जा सकता। हमारे जीवन में अगर धीरे धीरे लोभ कम हो और पवित्रता आने लगे तो वो पवित्रता हमारे अपने जीवन की कलुषता को, मलिनता को धीरे धीरे हटाने में कारण बनने लगेगी। जितनी हमारे भीतर कलुषता या मलिनता पहले आ चुकी है, आज हम वर्तमान में यदि अपने लोभ को घटा लेवें, कम कर लेवें, उतना ही जितना मेरे लिए आवश्यक है वह रखूंगा, अनावश्यक के प्रति मैं अपनी आसक्ति घटा लूंगा, तो आज भी हमारा जीवन बहुत चमकीला बन सकता है, बहुत उज्जवल बन सकता है। चमकीला और उज्जवल बनता कैसे है? ऐसे नहीं बनता। इसका एक उदाहरण देने से शायद समझ में आ जावे कि जीवन कब चमकीला कब उज्जवल मालूम पड़ने लगता है। ऐसे कौन से काम हम जीवन में करें इस तमाम घर गृहस्थी और संसार के प्रपंच के बीच भी कुछ ऐसे काम हम कर लेवे दिन भर में जिससे कि हमारे जीवन से वो थोड़ी सी मलिनता और कलुषता हट करके जीवन चमकीला और उज्जवल बन सके। उसके लिए एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति रोज रास्ते से गुजरता था और एक दिन ऐसा हुआ कि जहां से गुजरता था वहां ऊपर से किसी ने उसके ऊपर ढेर सारा कचरा डाल दिया। सुना हुआ उदाहरण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोज नमोकार मंत्र वो ही पढ़ते हैं, अब कहां से ले आए दूसरों, कोई हर्जा नहीं। धर्म की बातें रोज भी अगर सुनना पड़े और वे ही वे, तो उनमें से भी कुछ अपने जीवन के लिए प्राप्त करने की अपने भीतर, और क्या कहते हैं, अपने भीतर ही उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि आज किस भाव दशा में वो चीज कही गई, वरना तो दाल रोटी वही है जो कल खाई थी, आज भी खाना, वही कपड़े पहने थे और वही मंजन किया था, वही नहाना धोना जिंदगी भर करते रहते, कभी नहीं उबते हम उससे। लेकिन धर्म की बातों से अपन जल्दी उब जाते भैया, लेकिन अब उतना शयोपसम नहीं है, सर्वार सिद्धि के अहमिंद्रों के पास ऐसी सामर्थ्य है कि वे रोज 33 सागर आयु पर्यंत रोज तत्व की नए प्रकार से चर्चा करें तो भी उनका ज्ञान इतना अधिक है कि उसका रिवीलेशन नहीं होता। ज्यादा कठिन घटना नहीं है, वो रोज निकलता है, रोज उस पर कचरा फेंका जाता है और एक दिन नहीं फेंका जाता। जिस दिन नहीं फेंका जाता उस दिन वो चिंतित होता है। अपन तो इस बात से चिंतित होते कि कौन फेंक रहा है, वो इससे चिंतित है कि आज क्यों नहीं फेंका। बताइए आप, ऐसा कभी अपने जीवन में होता है? और एक दिन उसने इंतजार किया, दूसरे दिन फिर किसी ने नहीं फेंका तो थोड़ा मन में आया कि पता करें कि क्या बात हो गई। तीसरे दिन तो रहा नहीं गया, उससे आसपास लोगों से पूछा कि क्या कहीं गए हैं क्या इस घर के लोग। उनने कहा पता नहीं भाई, आप ही पता करो। और दूसरे से पता किया तो एक व्यक्ति जो उनके घर में आता जाता रहता था कहता कि आपको नहीं मालूम 3 दिन हो गए बड़े अस्वस्थ हैं, बुखार में पड़े हुए हैं, उठना बैठना मुश्किल हो गया, कोई आसपास भी नहीं है मदद करने वाला, सेवा करने वाला। मैं ही कभी कभार चला जाता हूं तो कपड़े बदलवा देता हूं, थोड़ा कुछ भोजन इत्यादि दे देता हूं, आगे पीछे उनके कोई नहीं है। तो फौरन सीढ़ियां चढ़कर के ऊपर चले जाते हैं और उसके माथे पर हाथ रखते तो आंख खोलता वो और देखता कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, एक तो वैसे ही मैं बीमार हूं और गला दबा देगा, ये तो वही आदमी है जिसके ऊपर मैं रोज कचरा डालता था है? लेकिन ये उसके लिए थोड़ों गए थे, ये तो उसके सिर पर हाथ रख के कहते कि भले आदमी, जब तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना प्रेम था कि रोज मेरे ऊपर कचरा डालते थे, देखो आप क्या कह रहे हैं, जब इतना प्रेम था कि मेरे ऊपर कचरा डालते थे तो क्या इतनी समाचार मुझे नहीं दे सकते थे अपनी अस्वस्थता का। ये उलाहना देता है, अपन देते उलाहना, अपन तो कबन दुख लेके पहुंच जाए कि अब दो हाथ कर लो। और अपने मन में दूसरा कोई अगर हमें कलुषता की तरफ ले जाता है तो हमारी उज्ज्वलता नष्ट ना हो, ये है जीवन का हमारा चमकीलापन, हमारी उज्ज्वलता, हमारी पवित्रता क्यों हम नष्ट करें, बल्कि उसके माध्यम से दूसरे की कलुषता को भी हम धो सकें। एक किसी उपन्यासकार ने महाभारत पर उपन्यास लिखते हुए कुंती के बारे में चर्चा करी, ये महापुरुष हैं, जब विदुर के यहां से हस्तिनापुर के राजमहल में एक दिन दुर्योधन से मिलने का विचार करती हैं, तो विदुर कहते कि बुआ जिंदगी उन्होंने तुम्हारे साथ अपकार किया, उनसे मिलने जाने की क्या आवश्यकता है जबकि पांचों बेटे वनवास भोग रहे हैं। तो मालूम क्या जवाब देती हैं, मैं उनके मन का द्वेष नहीं मिटा सकती तो अपने मन को भी कलुष क्यों करूं, मैं उनके मन का द्वेष मिटाने नहीं जा रही, मैं तो अपने मन की कलुषता कम करने जा रही हूं। मैं इतनी गई बीती नहीं हूं कि अपने से द्वेष रखने वाले के प्रति भी प्रेम ना करूं। बताइए ये सोच है, और वही सोच उस व्यक्ति का था, और वही बैठ जाता है, वो उसकी सेवा करता है और सेवा करने के बाद प्रार्थना करता भगवान से कि ये मेरा मित्र शीघ्र ही ठीक हो जाए। अब बताइए ऐसे में स्वयं का मन भी निर्मल हुआ और सामने के वाले के मन में जो किसी कर्मोदय से कलुषता आ गई थी वह भी हट गई, उसका मन भी गदगद हो गया कि देखो मैंने जिसके साथ में और खोटा काम किया वो मेरे उपकार के लिए खड़ा हुआ है। दूसरा हमें अपशब्द कहे तब तारीफ तो तब है कि मैं उसके अपशब्दों के बावजूद भी, मैं उसके अभिशाप के बावजूद भी उसे वरदान देने का ही मन बना, उसके अपकार के बावजूद भी मैं उसका उपकार करने के लिए मन बनाऊं, तो ऐसा जो जीवन है वही चमकीला है, उज्जवल है। और इतना ही नहीं, अगर हम धीरे धीरे अपने जीवन से लोभ लालच कम करते हैं तो मानिएगा कि हमारा जीवन भीगता चला जाता है। भीगा हुआ मन कभी कलुष नहीं हो सकता। मन भीगता ही है कब, जबकि कोई बात हृदय को छू जाती है जो अत्यंत पवित्र होती है, तब मन भीग जाता है। ऐसा मन अपना कब भीगता है, जब कोई कभी अपने जीवन में कोई ऐसा उपकार अपने ऊपर कर देता है जिसकी अपन कल्पना नहीं करते हैं, ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में घटित हो जाती जो हमारे मन को बहुत उज्जवल और पवित्र बना देती है, तब हमारा मन भीग जाता है। विनोबा के जीवन में वे लिखते हैं कि मैं बहुत कठोर था बचपन से, मेरा व्यवहार दूसरे के प्रति अदया से भरा हुआ था, मेरे मन में दया का भाव ही नहीं आता था। जब भूदान यज्ञ के लिए छोटे छोटे से गांव में लोगों के बीच से गुजरते, उनका दुख दर्द देखते तो मन भीग जाता। अब मन भीगने लगा, उस मन के भीगने से भीतर की जो कठोरता थी, कलुषता थी, वो हटने लगी, भीतर दया का भाव, करुणा का भाव आने लगा। और फिर उनकी भाषा बदल गई, किसी के घर में जाते तो कहते कि भाई तुम कितने पुत्र हो, तो वो कहता कि दो पुत्र हैं। अरे ऐसे कैसे तुम दो पुत्र हो, तीन हो, तीन। तो वो कहते बाबा हम दो ही पुत्र हैं। अरे नहीं भाई, क्या मैं तुम्हारे पिता का पुत्र नहीं हूं क्या, मैं भी तो हूं तीसरा। ऐसा कहकर के कहते कि तुम अपनी जमीन में से मुझ तीसरे पुत्र के लिए क्या देते हो या तीसरे भाई के लिए क्या देते हो। तब लोग गदगद हो जाते थे, उनका मन भी भीग जाता था कि अरे वाह, इतना महापुरुष व्यक्ति और हमसे कह रहा कि हम आपके पुत्र के समान या हम आपके भाई के समान हैं, हमें भी कुछ दो तुम, और इसको तो खुद चाहिए नहीं है, ये तो दूसरे किसी गरीब आदमी को देने के लिए आया है। तो उसका लोभ लालच घट जाता था, मन भीग जाता था और दान देने के लिए वो तत्पर हो जाता। आज अपने यहाँ पर है ऐसी दान की परंपरा कि अपना मन भीग जावे सो सबरो छोड़वे को मन हो जावे। मन ही नहीं भीगता, बाजू में जाके कान में से कहने परत के भी देख लो भी आगे बढ़ गए, तुम कछु करो, अब बिना मन भीगे करो कछु। तब अपन जाकर के थोड़ा बहुत हिलाने डुलाने पर 150,000 रुपया जैसी स्थिति होती सूदते और बढ़ा देते, कहो भैया बढ़ा लो, अब कह रहे हो तुम चार जने आए हो सभा के बीच में कही है तो बढ़ा लो। ऐसा दान तो अपन ने कही, हम बुराई नहीं कर रहे आपकी, ऐसा दान तो हम बहुत बार दे चुके, ऐसे दान का आनंद अलग है, वो अपन ने कई बार लिया होगा, लेकिन एक बार ऐसे दान का आनंद तो लो जिसमें दूसरे के दुख दर्द को देख करके मन भीग जावे और फिर अपन को ऐसा लगे कि अरे अपने सुख सुविधा की सामग्री छोड़ो, एक दिन न खाएंगे तो कोई बात नहीं, इसको दे दो, तो समझना कि अब थोड़ा सा मन हमारा भीगने से उज्जवल हुआ है, निराला हुए हैं। बहुत बड़े साहित्यकार उनके जीवन में कहते कि उस समय में सन 1940 के अंदर 45 के अंदर सस्ती का जमाना था, 300 रुपया बहुत होते आज की 3 लाख रुपया के बराबर हो, और ज्यादा के हो तो नहीं कह सकते हम, हिसाब किताब में थोड़ा कच्चा है हमारा मामला, तो और भी ज्यादा हो तो आप हिसाब लगा लेना भाई। अब ये 300 रुपया उनको अपनी किताब की रॉयल्टी मिली प्रकाशक से, और लेके पॉकेट में रखे चले आ रहे। अब रस्ते में जो है एक भिखारिन बूढ़ी अम्मा मिल गई और उसने हाथ फैला दिया, और हाथ अकेला फैलाया होता तो कोई बात अलग थी, लेकिन क्या कहा, बेटे मुझ बुढ़िया के लिए भी कुछ तो दे दो। अब बेटे शब्द सुनते ही साथ इनका मन विगलित हो गया, 300 रुपए ज्यों के त्यों निकाले और बुढ़िया अम्मा के हाथ पर रख दिया। अब वो तो दंग रह गई, कहने लगी बाबूजी मेरे मुझ गरीब के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे, मैंने तो दो पैसे मांगे हैं, आप मुझे ये इतनी राशि देकर के क्या कहना चाहते। कहते बूढ़ी अम्मा आपने मुझे मेरा बेटा कहा है, आप मेरी माँ हैं और अपनी माँ को मैं भीख मांगते नहीं देख सकता, 300 नहीं ऐसे और जितने चाहिए हो, पर ये भीख मांगना छोड़ दो। और कहते हैं इतनी बात सुनकर के उस बूढ़ी माँ का भी जीवन परिवर्तित हो गया, हृदय गदगद हो गया, परिणाम भीग गए, और उसने वह भीख मांगने का काम छोड़ करके और दूसरा काम करके अपना जीवन यापन करना शुरू कर। ऐसा कभी किसी को हमने दान दिया है आत्मनिर्भर बनाने का, अगर वास्तव में कभी भीगे मन से हम इस तरह अपने लोभ लालच को कम करके कोई चीज किसी को देते हैं मदद के लिए, तो उसका जीवन भी बदल जाता है। अपना जीवन तो उज्जवल होता ही है, सामने वाले का जीवन भी उज्जवल हो जाता है। और इतना ही नहीं, पवित्रता अपन बाहर बाहर की तो बहुत करते हैं, नहा धोके बढ़िया मंदिर में आते, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गंदी जगह में बैठना नहीं पसंद करते। बताओ कौन होगा जो गंदी जगह में बैठना पसंद करेगा, बस साफ सीजा बिछी है, मान लो पूरी पूरे में टाट पट्टी में एक कपड़ा अच्छो साफ बिछो है, तो सबसे पहले अपनो मन का हुई कोते बैठ जाए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बैठना चाहिए, ये बैठना चाहिए, लेकिन उद्देश्य क्या है अपना, हम ये चाहते कि हम ज्यादा से ज्यादा पवित्र उसमें बैठें, हमारे कपड़े कभी थोड़े गंदे हो जावें तो हम कहते कि इनको साफ कर लूं, हमारा कमरा जिसमें हम बैठते हैं उसमें कचरा पड़ा हो तो हम सोचते कि इसको कब हटा दूं, साफ कर दूं, ऐसे मैं नहीं बैठ पाऊंगा। ऐसे सब बाहर की मलिनता से हम जल्दी विचलित हो जाते, लेकिन भैया ऐसे ही अगर भीतर की मलिनता से विचलित हो जावे तो पवित्र बनने में देर नहीं लगेगी। जैसे बाहर का कचरा निकाले बिना कमरे में सोया नहीं जाता, ऐसे ही जिस दिन ये लगने लगे कि क्रोध करके अब नींद कैसे आएगी, ये अहंकार करके चैन से बैठूंगा कैसे, ये लोभ लालच से मेरा जीवन कैसे मैं ठीक ढंग से जी पाऊंगा, ऐसा विचार आ जावे तो बताइएगा कैसे नहीं हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। जीवन सार गर्भित होना शुरू होता, जीवन संतोष पूर्वक जीना शुरू होता है तो पवित्रता आती है। ये तो छोटी सी बातों पर और विचार करते, जीवन का सार गर्भित होने के मायने क्या है, जिसमें जो कुछ भी प्रयोजन भूत है, जो कुछ भी कल्याणकारी है उसे तो हम अपने पास बचा के रखते हैं, शेष सब जो है हम छोड़ते चले जाते हैं, उसमें भले ही छोड़े नहीं तो कम से कम आसक्ति तो घटाई लेते हैं। जितनी अधिक हमारे मन में अपने कल्याण की चिंता होती है उतना अधिक जो है हम सार गर्भित होते चले जाते हैं, उतना ही हम मलिनताओं को तराश करके अलग करते चले। जैसे कि मूर्ति में, पाषाण में है वह मूर्ति, लेकिन पाषाण में उसे हम तराशते चले जाएं तो जो सारभूत है वह मूर्ति के रूप में उसी पाषाण में से प्रकट हो जाता, जो निस्सार है उसे हटा देने पर। ठीक ऐसे ही जीवन सारभूत कब होता, जब जो निस्सार है वो निस्सार मालूम पड़े और उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। कचरा कौन अपने घर में इकट्ठा करके रखता, भैया रखता है कोई, कोई नहीं रखता, लेकिन हृदय के भीतर कितना सारा कचरा हम भरे रखे रहते, दूसरे से के प्रति द्वेष रखे रहते, दूसरे से घृणा रखी रहती, ये सब चीजें हमारे भीतर रखी रहती, फिर भी हम उनको कभी भी निकाल करके अपने जीवन को सारभूत बनाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। एक बार जब, अब तो नहीं रहे, जैनेन्द्र कुमार जैन बहुत बड़े साहित्यकार थे, हो सकता है कि आज के लोग नाम ही नहीं जानते हों और कई लोग भी जैनी थे ये भी नहीं जानते होंगे, कब है हो सकता है, अपनी बेखबरी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। अपन तो अकेले जा जाना थे कि कहाँ अच्छी दुकान चल है, वो कौन सो धंधा करे में, वो कौन सी पढ़ाई पढ़े में दो पैसा को सेजो हो जाए, अपन तो इतनी बहुत अच्छे से जाना था और इससे ज्यादा का जानने, और बाकी सब तो संसार बहुत बड़ा है। नहीं भाई, इसके अलावा भी है बहुत कुछ जिससे कि जीवन पवित्र होता है। जैनेन्द्र कुमार बड़े साहित्यकार तो थे ही, और उनके मन में धर्म के प्रति भीतर कहीं श्रद्धा तो थी, बाहर से कभी प्रकट नहीं हुई, इसलिए लोगों के मन में यह था कि वे श्रद्धालु नहीं हैं, नास्तिक हैं। यह भी उनके बारे में और कई बार लोगों ने कहा। एक बार उनके जीवन का संस्मरण लिखा उन्होंने कि वे एम्स में अस्वस्थ हो जाने से भर्ती करे गए दिल्ली में, और अस्वस्थता इतनी कोई उनके लिए कंठ में ऐसी व्याधि हो गई कि कंठ अवरुद्ध हो गया, हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया, कोई जाता था तो पहचान करके सिर्फ आंसू गिर जाते थे और कोई रिएक्शन नहीं होता था, पड़े रहते। डॉक्टर्स ने इतना ही कहा कि अब आप, हम तो उपचार कर ही रहे हैं पर आप भी अपने भगवान को स्मरण करें। उस दिन उनके मन में डॉक्टर के कहने से अत्यंत मन भीग गया, विगलित हो गया कि मैंने जो जीवन में सारभूत है, कल्याणकारी है, उसको तो कभी कभार याद किया है, पंच परमेष्ठी को और बाकी सब दुनिया को तो मैं याद करता रहा। और फिर उसी मन से उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये उनका नमोकार के बारे में संस्मरण छपा था 1978 या 1979 के लगभग। तो उन्होंने नमोकार आधे घंटे तक पढ़ते रहे और हिलक हिलक करके खूब रो लिया भीतर ही भीतर। कि मेरी जिंदगी व्यतीत हो गई, मैंने रोज जो है इसका स्मरण किया होता तो आज मेरी ये अवस्था नहीं होती। मैं दुनिया भर का विचार करता रहा और ये जो मेरे जीवन को सारभूत बनाने वाली चीज थी, मेरे जीवन में से कलुषता हटा करके मुझे उज्जवल बनाने वाली चीज थी, उसका स्मरण ही नहीं किया। तो आधे घंटे के बाद फिर से जब डॉक्टर उनको देखने के लिए आए तो वो कहते अपने नर्स वगैरह से कि डॉक्टर कि इन जैन साहब को क्या ट्रीटमेंट दिया, अभी मैं एक बार देख के गया था आधे घंटे में कौन सा ट्रीटमेंट दिया। तो वो सब चकित हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, हमने तो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। उनसे खुद पूछा कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, तब और हिलक करके रोने लगे कि डॉक्टर मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, जो मुझे पहले ले लेना चाहिए था वो लिया और कुछ नहीं किया, रो लिया अपने कर्मों पर और भगवान को स्मरण, अपनी उज्जवलता को स्मरण करने पर जीवन उज्जवल होता है, मलिनताएं हटती हैं। मेरा उज्जवल स्वरूप तो ठीक वैसा ही है जैसा कि पंच परमेश्वरी का है, लेकिन मैं इन कलुषताओं से घिरा हुआ और निस्सार चीजों में ही सार मानता रहा और इन सबको खो दिया। उस रोने से उनके जो भी अंदर कंजेक्शन हो गए थे, कफ इत्यादि जम गया था, वो सब हट गया, जिससे कि डॉक्टर की दवाई से जितना फायदा नहीं हो रहा था उससे कई गुना फायदा उनको हो गया। उसके बाद वे स्वस्थ हुए। ये उनने अपने नमोकार की महिमा कहते हुए संस्मरण लिखा है। भाई इससे क्या अर्थ हुआ कि थोड़ा सा समय अपने जीवन को सारगर्भित बनाने का दिन भर में तो निकालो। जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया या जो अच्छा बनाने में लगे हैं, उनके चरणों में बैठने के लिए थोड़ा समय निकालने पर जीवन पवित्र होगा, सारगर्भित होगा। और धर हृदय संतोष करूं तपस्या देह सो। अगर जीवन पवित्र करना है तो ये दो चरण हैं, एक लाइन है, इसमें से जितना बने हृदय में संतोष धारण करें और शरीर से भोग विलास तो बहुत कर लिया, हो सके तो इस शरीर से त्याग तपस्या करें। त्याग तपस्या सुनते ही साथ अपन थोड़े से गड़बड़ में आ जाते हैं कि जी त्याग तपस्या आप करो, आपको शोभा देती है, हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या त्याग तपस्या करेंगे। ए भैया, वैसे त्याग तपस्या की नहीं कह रहे, जो चीज हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको तो छोड़ दो। चार चीजों की जरूरत है तो उसके बाद पांचवी चीज के प्रति आसक्ति तो छोड़ दो, इतना त्याग तो कर सकते। एक चम्मच से काम चलता है तो चार चम्मच की क्या आवश्यकता है, इतना भी नहीं कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते। दस जोड़ी कपड़े तो कोई पहनता नहीं, विनोबा ने लिखा कि शरीर तो एक ही मिलो है, धरे रहो बंडरिया में, दस नहीं 100 धरे रहो, पैर तो एक ही पे हो क्योंकि शरीर तो एक ही मिला, विक्रिया करने की सामर्थ्य तो मिली नहीं। लेकिन इसके बाद भी हमारे मन में उन सब चीजों के प्रति अनाशक्ति का भाव नहीं आता है। अनाशक्ति ही तो त्याग तपस्या है, इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है, और कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, कहीं धूप में बैठ करके और अग्नि में तपना है क्या। मेरे भीतर उठने वाली जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, जो अहितकारी हैं, अकल्याणकारी इच्छाएं हैं, उनको पूरा नहीं करूंगा, यही मेरी तपस्या है, अपने कल्याण की इच्छाओं को ही मैं पूरा करूंगा। ऐसा तप तो अपन सहज भाव से कर सकते हैं भाई, रोज कर सकते। शरीर के द्वारा तो ऐसा ही अपन त्याग तपस्या करें, हृदय में संतोष धारण करें। और संतोष कैसा, बहुत सारे उदाहरण हैं संतोष के, अपन अपने जीवन में भी देखते हैं कि कई लोग जो है थोड़े सी चीजों में ही बड़े आनंद पूर्वक जीते हैं, और कई लोगों के पास अपार धन वैभव है, सब बातों की सुख सुविधा है, फिर भी वे बड़ी मुश्किल में जीते हैं, है? तो ये मुश्किल किसने लाई उनके जीवन में, असंतोष ने, और वो जो उनको आनंद मिला वो किसने लाया, वो संतोष ने लाया। ये बाहर की सामग्री आनंद लाती है या विषाद उत्पन्न करती है ऐसा नहीं है, वो जो मेरे भीतर का संतोष और असंतोष है वो मेरे जीवन को आनंद या कि दुख पहुंचाता है। तब जिस चीज में लाभ है भैया वो करना चाहिए, लाभ तो संतोष धारण करने वाले में है। लेकिन आज प्रगतिशील अपन है तो उसमें बहुत जल्दी मन में आ जाता कि ए महाराज, हम अगर संतोष करके